श्रोता मित्रों, अक्सर हम कहते हैं और सुनते हैं कि जीवन का सबसे पहला और अनिवार्य जो कोई सुख हो तो वो है खुद का स्वास्थ्य, जीवन की तंदुरुस्ती। हम अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अलग अलग तकनीकें इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे प्रयोग भी करते हैं, जैसे कि जिम जाकर नियमित तौर से एक्सरसाइज करना, कसरत करना, खाने पीने की चीजों पर बहुत ध्यान रखना, कुछ चीजों का परहेज करना या फिर किसी चीजों का अधिक मात्रा में सेवन करना। लेकिन जिस बात पर हम बहुत कम ध्यान देते हैं या फिर यूं कहें कि इतना महत्व नहीं देते, वो है हमारा पाचन तंत्र। आज हम जानते हैं आयुर्वेद के डॉक्टर आलाप अंतानी से कि आयुर्वेद की दृष्टि के हिसाब से आहार और पाचन क्रिया का संबंध क्या है। डॉक्टर आलाप, आपका SBS हिंदी पर स्वागत है।
जी नमस्कार।
डॉक्टर साहब, पहले ही ये प्रश्न बताइए कि स्वास्थ्य या तंदुरुस्ती के लिए भोजन, आहार और शरीर का संबंध क्या होता है, किस तरह से इस पूरे विषय को आप देखते हैं?
देखिए, आयुर्वेद जो है उसमें स्वास्थ्य को बहुत ही महत्व दिया गया है। जैसे मैं आपको बात करूं, एक छोटी सी मुझे एक आयुर्वेद का जो श्लोक है वो मुझे याद आ रहा है इस बार कि अन्नात भूतानि जायन्ते जातात् च अन्ने वर्धन्ते। यानी कि हमारा जो पंचमहाभूत रूपी जो शरीर है वो अन्न से बना है, अन्न ही इसको बनाता है, और जाता च अन्न वर्धनते यानी कि उसका वर्धन जो है वो भी अन्न के ऊपर ही पूरा निर्भर है। तो इसी के कारण आयुर्वेद में जो है आहार की उपयोगिता और हमारी जो पाचन की प्रणाली है जो आहार को पोषण में रूपांतरित करती है उसकी बहुत सारी बातें भी की गई है।
जैसे कि आपने बताया कि पोषण को रूपांतरण की बहुत सारी बातें बताई गई है, क्या उसका थोड़ा सा अंश हमारे श्रोताओं को समझा सकेंगे, जिससे जो हमारी आम जिंदगी है, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, उसमें कुछ बदलाव की जरूरत हो तो हम कर सकें?
जी जरूर। देखिए, पाचन की जो प्रक्रिया है, क्योंकि आहार का पाचन ही एक बहुत महत्व रखता है, क्योंकि हम आहार किसी भी अच्छी गुणवत्ता का हम आहार लेंगे पर हमारा पाचन तंत्र अगर हम उसको ठीक से नहीं समझ पाएंगे तो उस आहार का पचन हमारे शरीर में ठीक से नहीं होगा। तो उसको जानना, हमारे पाचन प्रक्रिया को जानना बहुत ही जरूरी बात हमारे लिए है। आज का प्रमुख विषय है पाचन तंत्र की अगर हम बात करें तो वो है अग्नि। एक सामान्य उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि हमारे घर में रसोई में हम जब खुराक पकाते हैं तो हमें पता है कि कुछ खुराक को धीमी आंच पर ही पकाना चाहिए, तो कुछ खुराक ऐसे हैं कि उनको ज्यादा अग्नि की आवश्यकता रहती है। जैसे बाह्य वातावरण के अंदर जो अग्नि है या सूर्य का जो ताप है उसको अगर हम अग्नि के या गर्मी के रूप में देखें, या हम जो और अग्नि से प्रज्वलित करके हम खुराक हम पकाते हैं वो देखें, तो ये जो प्रक्रिया बाह्य वातावरण में ये सब करते हैं उसी प्रकार की कुछ प्रक्रियाएं जो है वो हमारे शरीर के अंदर जठर अग्नि या अग्नि करती है। अब अग्नि जो है वो मुख्यतः हमारे शरीर के अंदर जो खुराक पकाती है वो चार प्रकार की होती है। एक होती है मंदाग्नि, जैसे हम अभी जो अभी बात कर रहे थे कि खुराक को धीमी आंच पे पकाना, तो ऐसे ही मंदाग्नि वाले जो लोग होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनकी जो अग्नि होती है, पाचन प्रक्रिया जो होती है वो थोड़े धीरे से कार्य करती है, यानी खुराक पचने में उनको थोड़ा ज्यादा समय चाहिए होता है। दूसरी होती है तीक्ष्णाग्नि, पूरा जैसे मंदाग्नि से उलट हम देखें तो कुछ चीजों में वो जो तीक्ष्णाग्नि वाले जो लोग होते हैं वो खुराक को काफी जल्दी से पचा सकते हैं, यानी कि हम देखेंगे कि तीक्ष्णाग्नि वाले जो व्यक्ति हैं उनको भूख बहुत ही ज्यादा और जल्दी से लग जाती है। तीसरा है ऐसे ही विषमाग्नि, यानी विषमाग्नि कभी जो है वो अग्नि मंद रहती है उन पुरुषों की, तो कभी जो है ये जो अग्नि है वो तीक्ष्ण रहती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मंदाग्नि, विषमाग्नि और तीक्ष्णाग्नि अगर हम जान पाए कि हमारे शरीर में हमें भूख किस तरह लगती है, जल्दी लग रही है या देर से लग रही है, या हमारे शरीर में हम जो खुराक लेते हैं वो पचता किस तरह है, वो उसके ऊपर से हम जान पाएंगे, तो इसके हिसाब से भी हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। सबसे बेहतर और चौथी प्रकार की जो अग्नि कही गई है वो है समाग्नि, यानी कि जो कोई भी खुराक हम अगर अच्छे तरीके से सुपाच्य खुराक लेते हैं तो उसको जो अग्नि हमारे शरीर के अंदर अच्छे से पका सकती है, दैट इज नॉन एज या वो जान उसको कहते हैं समाग्नि। तो इस तरह चार प्रकार की अग्नि हमारे शरीर में रहती है। हम हर एक का व्यक्तिगत जो है वो अग्नि का प्रमाण और हमारी पाचन प्रक्रिया उसके हिसाब से अलग अलग तौर पे काम करती है। तो विटामिन या कार्बोहाइड्रेट्स वो तो हमें खुराक में जाननी ही जाननी चाहिए, पर उसके साथ साथ अगर हम हमारे शरीर की अग्नि को जान पाए तो वो हमें काफी मदद करेगी कि हमारे कौन से प्रकार का खुराक हमें ज्यादा लेनी चाहिए।
जैसे कि आपने कहा कि कौन से प्रकार का खुराक हमें ज्यादा लेना चाहिए, तो क्या आयुर्वेद के हिसाब से आहार के भी भिन्न भिन्न प्रकार हैं?
जी, आहार के बहुत सारे प्रकार दिए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद के शास्त्रों में आज से 5,000 साल पहले बहुत सारे वर्गीकरण किए गए हैं आहार के। जैसे कि मैं आपको बताऊं, शुक धान्य, शिंबी धान्य, जैसे मांस वर्ग एक अलग से बताया गया, फल वर्ग एक अलग से बताया गया, जहाँ पे हर एक फल के विविध जो गुण कर्म है वो हमारे शरीर में जाके किस प्रकार से कार्य करेंगे उनकी बहुत ही विस्तृत उसमें चर्चा दी गई है। और इसी तरह देखें तो क्षीर वर्ग है, यानी दुग्ध, हम जिसको मिल्क कहते हैं, तो 8 प्रकार के प्राणियों के दूध का भी उसमें वर्णन। तो इस प्रकार तो बहुत सारे वर्गीकरण आयुर्वेद ने किए। पर अगर पाचन प्रक्रिया को ध्यान में देखते हुए हम देखें तो इस हरेक प्रकार का जो आहार द्रव्य है उसके मुख्यतः हम 4 विभाग कर सकते हैं। पहला है रस, जैसे या टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, तो मुख्यतः 6 प्रकार के टेस्ट जो है वो आयुर्वेद ने बताए गए हैं। और हर एक प्रकार के जो आहार द्रव्य है या इसमें से 1 या 2 या 3 या 5 प्रकार या 6 प्रकार के जो स्वाद होते हैं उससे अभिप्रेत होता है। दूसरा है गुण, 20 प्रकार के ऐसे गुण आयुर्वेद में दिखाए गए हैं कि जो शरीर में आहार जो जाता है वो 20 प्रकार के उनमें से जो गुण उसके अंदर होते हैं उस प्रकार के वो कार्य करेगा। जैसे हम देखें, कोई आहार हमें शीत लग रहा है या बहुत ठंडा लग रहा है, कोई आहार जो है वो शरीर में जाके उसकी, जैसे चिली हम देखें तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम से फास्ट कर देगा, तो इसके कारण उसको हम कह सकते हैं उष्ण गुण युक्त खुराक। तीसरा इसी तरह कहा गया है वीर्य, वीर्य 2 प्रकार के मुख्यतः, उष्ण और शीत। ये हम देखते हैं हमारे व्यवहार में कि ज्यादातर लोग इस तरह जानते हैं कि ये बहुत ठंडा है खाने में, ये बहुत गर्म है, यानी स्पर्श से ठंडा या गर्म नहीं, पर उसकी जो स्वाभाविक जो गतिविधि शरीर के अंदर होती है खुराक की, उसके अनुसार उसको उष्ण और शीत ये 2 विभागों में प्रायोजित किया गया है। इसके साथ साथ और एक कंसेप्ट दिया गया है विपाक का, यानी कि एक बार जो खुराक हमारे शरीर में जाएगी वो डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरी पाचन प्रक्रिया में प्रसार होने के बाद शरीर में किस तरह कार्य करेगी उसको हम विपाक कहते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे विभिन्न विभागों में आयुर्वेद ने हर एक आहार द्रव्य जो है उसको वर्गीकृत किया गया है, और उस वर्गीकरण से हिसाब से अगर हम चलें तो ही हमारा स्वास्थ्य जो है वो काफी अच्छा या सेहतमंद रह सकता है।
जिस तरह से आपने आहार के भिन्न प्रकार बताए, अगर उसी बात को मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊं तो कहा गया है कि आयुर्वेद में महत्तम जो रोगों का कारण है, जो मूल है, वो अनुचित पाचन क्रिया या फिर अनुचित चयापचन की क्रिया को माना जाता है, ऐसा क्यों?
जी बिल्कुल, देखिए पाचन प्रक्रिया जो है वो हमारे शरीर का इंजन रूपी कार्य करती है। जैसे इंजन से ही पूरा जो यंत्र है वो चलते हैं, वैसे ही हमारा पूरा शरीर जो है वो पाचन तंत्र के बाद जो पोषण हमारे शरीर को मिलता है उसी के ऊपर कार्य करता है। और आयुर्वेद में इसीलिए उसको बहुत भारपूर्वक कहा गया है कि अगर हमारे शरीर का पाचन तंत्र जिस प्रकार का है उस प्रकार का भोजन हम नहीं लेते हैं तो जरूर से वो पोषण की जो प्रक्रिया है, क्योंकि खाना पचने के बाद जो वो हमारे सिस्टम में जो एंटर होता है वो ठीक से अगर प्रवेश नहीं करता है तो विभिन्न रोग होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसी के कारण आयुर्वेद में जो है वो खास करके हमारी पाचन प्रक्रिया को जो है उसी को महत्व ज्यादा दिया गया है, और अगर उसका हम ख्याल नहीं रखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा रोग होने की पूरी संभावना रहती है।
जी, ये तो बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली, ताकि हम खुराक संतुलित तो ले ही ले, लेकिन के अलावा अपनी पाचन तंत्र को, पाचन क्रिया को भी थोड़ा सा जान ले।
बिल्कुल
डॉक्टर आला, बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को शेयर करने के लिए।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरिता जी, क्योंकि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आज मुझे मौका मिला है कि ये जो भारतीय हमारा समुदाय है पूरा, हमारे जो भाई बहन है उनसे हम कुछ आरोग्य के बारे में बात कर पाए। मैम थैंक यू वेरी मच फॉर दैट।